भक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदे तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणान्ति। अमृतम् द्वितीय खंड सप्तम अध्याय हम लोग अनुसंगबद्ध धीय समात्मानं तथेदं यथा समाधो मुनयो भी अब्धितोये नद्य प्रतिष्ठा इव नाम रूपे। इसके व्याख्या बतला रहे थे और इसको समझने के पहले ये एक चीज समझिए, संसार में सभी सुख चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सुख का विपरीत है दुख। किंतु चाहने से कुछ नहीं होता, दुख भी अवश्य आता है, सिर पर चढ़ कर भोग करा लेता है। और सुख जिस पद्धति से संसार के लोग सुख पाना चाहते हैं, सुख की छाया को भी वो लोग स्पर्श नहीं कर पाते, अंतिम दम तक मरते मरते बड़े दुखी होकर के इस संसार से विदा हो जाते हैं। आखिर ये सुख है क्या? आदमी समझता है कि हम मर जाएंगे दुख दूर हो जाएगा, मरने के बाद में अब दुख नहीं होगा, जो है इसी जन्म में ही दुख जो भोग रहे हैं, इसलिए सुसाइड लोग करते हैं। पहले सुख को समझिए, सुख में बस मैं हूं, सुख का विषय और आश्रय दो नहीं है, केवल आश्रय है, विषय उसमें नहीं है। क्या समझे? सुख में विषय नहीं है, आश्रय, मैं भोगता हूं, मैं भोग करूंगा सुख, उसमें मैं ही सब कुछ है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। सब समय मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुख चाहता हूं, मैं खाता हूं, मैं रसास्वादन करता हूं, मैं देखता हूं, ये मैं ही मैं है, और उससे वो सुख पाना चाहता है। इसके बाद में एक आनंद नाम की चीज है, आनंद में विषय और आश्रय दोनों है। कैसे? एक आदमी खुद खाता है, उसमें जो सुख होता है उससे अधिक उसको सुख होता है अपने प्रेमी किसी को खिलाए। संसार में हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं उन पर मेरी ममता है और वो कहीं से आ गया तो पहले उसे हम खिलाएंगे, और उस खिलाने में अपने खाने की अपेक्षा बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो प्रिय व्यक्ति हैं ये हो गए विषय और मैं हो गया आश्रय, मैं भूखा रह करके भी दूसरों को खिला रहा हूं। प्रिय व्यक्ति में जैसे बेटा है, हम लोग के पिताजी थाल में उनको परोस दिया जाता और मैं जरूर जल्दी से पहुंच जाता उस समय में और हमको खिला करके तब खाते। राम के संबंध में सुना है, कृष्ण के संबंध में सुना, महाराज नंद बाबा अथवा महाराज दशरथ नंद बाबा एक तरफ में बलदेव जी को और उनको बैठा करके खिला करके जब संतुष्ट हो जाते, किलकारी मार करके इधर उधर चले जाते, तब फिर खाते बड़े प्रेम के साथ। इसमें विषय कौन हो गया? कृष्ण। आनंद बाबा हो गया आश्रय। अपने जो खाते उसे लग्न आनंद हो रहा है कृष्ण को खिलाने में। इसलिए आनंद में दो चीज है, विषय और आश्रय। ये अद्वैतवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं। वो क्या चाहते हैं? अत्यंतक दुख निवृत्ति, और इसी का नाम है सुख। सुख नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। जब सब प्रकार के दुख सब दूर हो गए तो उसी को कहते हैं अत्यंतक दुख निवृत्ति रेव मुक्ति, इसी को मुक्ति। एक आदमी को पकड़ करके बांध रखा है और उसको छोड़ दिया तो उसकी मुक्ति हो गई, तो अब जरा सुखी हो गया। ये दुखी किस लिए था? बांधने दूसरे ने उसके बांध दिया था, गला कोई दबा रहा था, मर रहा था, उसको छोड़ दिया, मुक्ति उसकी हो गई। जेल में पड़ा था वो मुक्ति हो गई। इसलिए कोई दुख में था, इसलिए उसको जेल से जब छोड़ दिया तो ये मुक्ति हो गई, तो अपने को सुखी मानता है। किंतु जब जेल से बाहर था पहले, उसकी तुलना में जेल से छोड़ा गया उसको क्या सुख में क्या मिला? पॉजिटिव रूप में उसे कुछ भी नहीं मिला। तो निर्विशेषवादियों का, ज्ञानी लोगों की मुक्ति ऐसी ही है, उसमें अपना ही सुख चाहते हैं। इसी तरह से भगवान की सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना चाहते हैं, निर्विकार की सत्ता में। किस लिए? दुख की अनुभूति न हो। क्यों? वो आनंदमय है, आनंदमय ब्रह्म। किंतु जब अपनी सत्ता को उसमें मिला देगा तो वो आनंद भोग कर रहा है कि दुख भोग कर रहा है उसको मालूम होगा? पत्थर की भांति नहीं होगा। इसलिए यहां पर दो उदाहरण दिए गए। यथा समाधौ मुनयोस अब्धितोए, और दूसरा नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। ब्रह्मवादी लोग, निराकारी लोग, जगत से न इति न इति, स्त्री पुत्र में सुख है नहीं, इस शरीर में सुख है नहीं, मन में सुख है नहीं, संसार के किसी भी विषय में सुख है नहीं, नैति करते 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 बंद गोभी के पत्तों की भांति सब हटा देते हैं। एक हमारे जैसा परम बुद्धिमान शिष्य था कोई, तो वो गुरु जी के साथ में कहीं गया, तो जिस घर में गया वो घर के मालिक बड़ा अच्छी नौकरी पर थे, कहा जी गुरु जी बहुत दिनों के बाद में आया है, बाजार में आज नई गोभी बंद गोभी निकली, काफी रेट ऊंचा। उसने खरीद करके लाया, कहा शिष्य को कहा आज सुंदर गोभी का की सब्जी होनी चाहिए, बहुत सुंदर। कहा जी अच्छी बात है। वो तो चला गया इनको दे करके, और इन्होंने उसके जाने के बाद में गोभी को अमान्य करना है ना, अमान्य माने क्या, काटना है, सब्जी के लिए प्रस्तुत करना है। तो उसने कहा जैसे ऊपर में पत्ता है उसको हटाया, फिर दूसरा पत्ता देखा ये पत्ता ही, फिर हटाया। इस तरह से पत्ता हटाते 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 देखा जी पत्ता ही पत्ता, अंत तक पत्ता ही मिला, सबको लेकर के उठा करके फेंक दिया, इनको इस तरह बैठा हूं। अंत तक पत्ता को देखा बंद, तुम लोग समझ रही बंद गोभी, अंत तक पत्ता ही पत्ता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। कह जब बेकार की चीज पत्ता पत्ता, वो लेकर के घूरे पर फेंक दिया बाहर में, और गैया उसे खा गई। जब वो लौटा दुकान वहां अपने काम से, आज जल्दी ही आ गया, तो सोचा जी हमारे लिए प्रसाद में कुछ तो रखा होगा, तो उसे पूछा जी गुरु भाई हमारे लिए गुरु जी को ये सब्जी दिया और हमारे लिए कुछ रखा, तो सब्जी कहाँ दिया? आ तो जो दिया था, अरे वो तो केवल पत्ता था, उसके अंदर में कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे निर्विशेषवादी लोग जगत में कहीं भी सुख नहीं देखते, ब्रह्म है कोई चीज ये नहीं देखते, केवल निराकार देखते हैं। इसलिए उनका सुख यही दुखों से निवृत्ति हो करके अंत में एनी हेलेशन टू ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, बस समाप्त। उस समय में इतनी समाधि में हो जाते हैं निर्विशेषवादी लोग, मन को एकाग्र कर जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा सप्त समाधि एकदम निश्चल हो जाते हैं, यहां तक कि सांस की गति को भी रोक देते हैं, और उस समय में मैं कौन हूं ये भी भूल जाते हैं, वो ब्रह्म क्या है वो भी भूल जाते हैं, जीवो एकदम हो जाते हैं। गोपियों के लिए कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, क्या ऐसे ही समाधि में जैसे मुनि लोग मनन करने वाले, मनन करने वाले मैंने क्या, ये ब्रह्म नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये आनंद नहीं है, मनन करते 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 जब समाधि में पहुंच जाते हैं, आनंद भी भूल जाते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, अपना इष्ट भी भूल जाते हैं, सभी कुछ भूल जाते हैं, एकदम जीरो जैसा हो जाते हैं। उस समय सिद्ध देव की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, मैं मेरा नाम ब्रह्मा सुख कुछ का भी पता नहीं। तो क्या गोपियां भी इसी प्रकार से कृष्ण में ऐसे अनुरक्त हो गई, अनुसंगबद्ध, अनुसंग माने क्या, कृष्ण में चित्त को ऐसे संग में रंग दिया कि वो सब कुछ भूल गई, मैं ये भी भूल गई और सब कुछ भूल गई, धन नहीं ऐसा मत समझो। अच्छा तब फिर ऐसा कहें जैसे नदियां 18,000 या 1800 मील चल करके गंगा में, गंगा पहुंची समुद्र में और गंगोपसागर में जाकर हजारों धाराओं से समुद्र में मिली, और मिलने के बाद में जब उसका पानी उसमें मिल गया है तो फिर गंगा उस पानी का नाम नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो क्या ऐसे कहे नहीं, तो कैसे, उसी के लिए यहां पर बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, अनुसंग निरंतर संग आसक्ति के साथ में कृष्ण की उपलब्धि उनको है, कृष्ण का रूप माधुर्य पान कर रही हैं, उनके संग में विलास इत्यादि कर रही हैं, जितना कृष्ण के लीलाओं में होता है वो सब को देख रही हैं, और मैं उनकी सेवा कर रही ये भी देखती हैं, किंतु ऊपर से ये मालूम नहीं होता। अपने को विस्मरण कर चुके हैं ये बात तो ठीक है, योगी लोग भी विस्मरण अपने को करते हैं, किंतु विस्मरण में कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के विलास का, सबका चिंतन गोपियों को परिपूर्ण रूप में माधुर्य का आस्वादन करने के कारण उनको ऐसा हो रहा है, और उनको निराकार होने के लिए, बस दोनों में बहुत अंतर है। उसी को कुछ और भी ये बतला रहे हैं, हमें आसक्त होने के कारण अपने अपने नाम का विस्मरण जैसे मुनियों को हो जाता, मनन नहीं करते, अब क्या करते हैं चुपचाप पत्थर जैसा, उसमें सुख भी उनको अनुभूति नहीं है ब्रह्म की। मथुरा में ऐसे ही ब्रह्मवादी लोग हैं, किंतु लोगों को ठग करके ऐसा करा दिया है, मूर्ख बना करके पशु की भांति मूर्ख बना रखा है, वो हम कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्णम शरणम मम मंत्र भी दे देते हैं, ऐसे ठक करके न जाने इनको क्या मिलता है, लोगों को बेवकूफ बना रखा है, पूरा बेवकूफ, लोग समझते नहीं, समझते क्या, ये तो देख रहे हैं कृष्ण का लीलाओं का भागवत भी पढ़ते हैं, कृष्ण का गान भी कीर्तन भी, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ये भी करते हैं, और कितने आलाप लेते हैं, कोई कोई रोते भी हैं, ऐसा करते हैं, लोग समझते नहीं, जैसे कृष्ण भक्ति में और इसमें क्या अंतर है नहीं समझ पाते। उस समय जब गोपियों का जो सहज समाधि होती है, रास्ते में चल रही हैं, किंतु ऐसे समाधिस्थ हैं कोई समझ नहीं सकता, उसमें कृष्ण की वैचित्रपूर्ण विलास और उनकी लीलाएं हैं, उनका नाम है, सबको अत्यंत अधिक रूप में स्मरण करती हैं। तव कथामृतम तत्त्वजीवनम
कवि भी ऋणितम कर्ण शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाज।
गोपियों को मालूम नहीं है जब मैं क्या कर रही हूं, किंतु कि एक एक जो शब्द एक एक जो कुछ निकल रहे हैं मानो वो सभी क्या है एकदम परिपूर्ण शब्द, किंतु वो नहीं समझ रहे हैं जी मैं क्या बोल रही हूं क्या कर रही हूं। कृष्ण नहीं और समझते हैं कि कृष्ण है सामने और उनके लिए उलाना दे रही हैं, तुम्हारी कथाएं विष है, विष मारने के लिए, विष से मारने के लिए हमें ऐसा किया, हमारा जीवन उत्तप्त हो गया, इस तरह से कह रही है। किंतु है किसमें? सहस समाधि में। इसको समझ सकते हैं व्यास और सुखदेव गोस्वामी लोग, नारद गोस्वामी समझ सकते हैं, साधारण नहीं। गोपियों का प्राप्त क्या है? प्रेम। और मुनि का प्राप्त क्या है? सायुज्य मुक्ति। इसलिए मत समझ लो जैसे ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं उनके लिए, गोपियों के लिए नहीं, इसलिए पहले न लगा दिया। साधारण अर्थ करते हैं गीता प्रेस इत्यादि में, इसका अर्थ ऐसे ही है, ये नदियों के समान नाम रूप को भूल करके और समाधिस्थ हो गई, और जैसे मुनि लोग मनन करते करते समाधि में सब कुछ भूल जाते हैं, गोपियां भी वैसे हो गई। तो फिर इनका वैशिष्ट क्या रहा? और भी कह रहे हैं समुद्र में नदियां नदियों की भांति और मुनियों का दृष्टांत के द्वारा यह प्रतिपन्न हो रहा है, मुनियों का जो प्राप्त है साहिज्य मुक्ति है, एक तरह से जीरो है आनंद के लिए, सुख के लिए, अनुभूति के लिए। तो अभी मान लेंगे ये मन के द्वारा कुछ सुख है, सुख उसमें नहीं है, तभी मान लो जो है थोड़ा सा दुख की अनुभूति नहीं है, यहां तक तो है। और गोपियों का क्या है? इनका है आत्मसत्ता विद्यमान रहती है और भक्ति की सिद्धि हेतु विशेषतः उनका चित्त, उनकी इंद्रियां, उनका मन सब कुछ कृष्ण में अनुसंग, अनुसंग माने क्या, एकदम उसी में डूब जाती है। उनकी इंद्रियां जितनी भी हैं सब, उनकी बुद्धि वृत्ति उसमें संपूर्ण रूप से सेवा में लग जाती है, इसलिए उनका विस्मरण कभी नहीं होता। किसका? अपना तो हो जाता है शरीर का, कल बतलाया था ना मैं कहां जा रही हूं, मैं कौन हूं, किंतु कृष्ण का विस्मरण होता है, कृष्ण में चित्त ऐसा है कि इनका विस्मरण हो जाता है, यही दोनों में अंतर है। इससे समस्त विषयों में यद्यपि ऊपर से मालूम होता है, ये जो उदाहरण दिया गया है विस्मरण के अंश में, किंतु आनंद की अनुभूति में नहीं, जैसे जैसे वो लोग विस्मरण हो जाते ये भी हो गई, किंतु वो लोग जीरो पर जाकर के अटक गए, और ये लोग क्या कृष्ण के विलास इत्यादि का चिंतन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। किंतु एक बात, एक शंका उदित होती है, हम लोग तो शंका नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, न शास्त्र का ज्ञान है, न विचार है, न चिंतन। ये सनातन गोस्वामी एक आदमी को लेकर के शंका उत्पन्न करे, क्या भाई कृष्ण ने एक जगह कहा है नाहम आत्मानम आशे मदभक्त इशाद भीर बिना श्रियम अत्यंत की वापी जेशां गतिरहम परा। श्रीमद भागवत में उन्होंने नवे स्कंद में उन्होंने लिखा है, क्या एक दूसरा भी ऐसा ही परलल श्लोक है, उद्धव जैसे हमारे प्रिय हैं वैसे प्रिय स्वयंभू हमारे जो पुत्र हैं ब्रह्मा वो नहीं, शंकर जी हमारे परम मित्र हैं वो नहीं, उनसे भी अधिक, और लक्ष्मी जो हमारे हृदय में बैठती हैं सबसे बस्तक्षल पर वो भी हमारी प्रिय उतनी नहीं है, हमारी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय हमारे उद्धव हैं, क्योंकि भक्त हमारे हृदय होते हैं और भक्तों का मैं हृदय होता हूं, इतने प्यारे होते हैं। लक्ष्मी जी को कहा, यहां पर समस्त लक्ष्मियों में लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी की महालक्ष्मी हैं। तो यहां पर इसको देखने से मालूम पड़ता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो लक्ष्मी जी अर्थात राधा जी से भी अधिक प्रिय है कृष्ण को, ये एक शंका आई। लक्ष्मी है ना, इसलिए तो यहां पर कहते हैं साधु हमारे इतने प्रिय हैं, उनके छड़ा छोड़ करके मैं अपनी आत्मा को और अपनी प्रियसी को भी स्प्रिया नहीं करता, न हम आसमान आश्रय, मैं उनकी स्प्रिया नहीं करता। किसको? साधुओं को। और उद्धव ही उनकी आत्मा है, ऐसे साधुओं को, अपनी आत्मा को भी नहीं चाहता और लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता, तो समस्त लक्ष्मियों में लक्ष्मी राधा जी को भी नहीं चाहता। ऐसा प्रसंग आ सकता है, किसी को शंका हो सकती है, इसलिए ऐसे मालूम होता है कि भक्त ही उनके श्रेष्ठ हैं सबसे। और भी कहा है, आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समस्त भक्तों का यहां पर भी, और भी बहुत जगहों में कहा है। यहां पर गोपियां सी तुल्य हैं, इसलिए यहां पर एक शंका उठेगी, जैसे तत्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा भी भक्त भगवान के प्रिय है। इसको दूर करने के लिए गोपी महात्म वर्णन के समय में कृष्ण कुछ छिपा रहे थे अब तक उद्धव को, किंतु वहां अब इसको खोल रहे हैं, वो छिपा के आ रहे थे। जैसे गोपियां हमारे विरह में कातर हो जाती हैं, उद्धव उद्धव का करके जरा चुप रह गए, माने क्या, मैं उसके उन लोगों के विरह में परम कातर हो रहा हूं, इस चीज को छुड़ा, जरा छिपा लिया, पीछे से उन्होंने व्यक्त किया है। यह भी श्रीमद् भागवत में पीछे से बतलाया गया है। उन्होंने फिर कहा क्यों नहीं, हृदय में ये भावना आई और कुछ बोलना चाहते, फिर बोला क्यों नहीं, यदि उद्धव को कहूं तो उद्धव जाकर के कह देगा ये कृष्ण भी तुम्हारे लिए बड़े परम कातर हैं, वो रोते रोते हमसे कहे, सुनते ही क्या होगा। गोपियां और इसे जानकर अधिकतर महाशोक में मूल्यवान हो जाएंगी, उन्मादिनी बन जाएंगी, हो सकता है कि प्राण भी न धारण करें। यदि हम कहते हैं कि देखो आप हमारे प्रिय, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब। यदि किसी को हम कहते हैं कि देखिए आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तो ये प्रेम को उघाड़ना हुआ, प्रेम हल्का हो गया, इसके मतलब आपके हृदय में उतना प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम को छिपा कर जितना गाढ़ दिशा, ये सब व्यक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ये अधिक उघाड़ करके कहना उचित नहीं है, और यदि कह दूं तो गोपियां इसके लिए एकदम उन्मादिनी हो जाएंगी, इसलिए उसको छिपाया। आप उसी को उद्धव जी के लिए संतोष के लिए, कृष्ण के लिए गोपियां इतनी तड़फ रही हैं और कृष्ण को कुछ नहीं है, इसलिए कुछ कुछ व्यक्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। और मैं इतना कठोर हूं, उद्धव यदि समझेगा हमारे भाव को तो समझेगा नहीं, जी मैं कौन कठोर हूं, कठोर नहीं, कल बतलाया था ना, गोपियों को से विलग हो जाते हैं, उनको इतना कठोर बन जाते हैं, किस लिए, उनके प्रेम को वर्धन करने के लिए, और फिर उनको भी आस्वादन कराने के लिए, अपने भी आस्वादन करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं जो उद्धव नहीं समझ सकेगा, उद्धव से महाकठोर है, गोपियां इतने विरह में तड़प रही हैं और कृष्ण एक बार वो नहीं जाता, इसलिए बड़े दुखी होंगी उद्धव। इसलिए कुछ साधुओं की महिमा यहां पर बतला रहे हैं। नाविदन मूल में है, नाविदन नहीं जाना, क्या पद्धति के द्वारा, अहम शब्द के साथ में इसका जोड़ना, यह संस्कृत का व्याकरण का है, संस्कृत के व्याकरण को छोड़कर के आगे चलो। तात्पर्य यह कि नदी अजित प्रकाश समुद्र में प्रविष्ट होकर के नाम रूप को प्रत्याग कर देती हैं, और मुनि लोग समाधि में हमारे में प्रविष्ट होकर के अपने नाम को और जिसमें मिलते हैं उसके नाम को यह सब कुछ को भूल जाते हैं, शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो वो मननशील थे किंतु अब मुनि नहीं रहे, उनको मुनि नहीं बोला जा सकता, अथवा अभिमान्य शून्य होने के कारण जब वो समाधिस्थ हो गए, अब वो मननशील धर्म रहा नहीं, उसमें सब अनुसंधान रहित होकर के
अभिमान शून्य हो गए तथा अमी यही रूप सदा अनुसंधान रहित होइया। ओ ये कह रहे हैं जिस प्रकार से गोपियां सब कुछ विस्मरण हो गई कृष्ण के लिए और कृष्ण की चिंता करने लग गई, उनके विलास का चिंतन करने लगी, उसमें तन्मय हो गई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या गोपियों में मैं ऐसा तन्मय हो सकता हूं सब कुछ छोड़ करके अपने बाप मैया भैया अपनी पत्नी लाखों भक्त करोड़ों भक्त हैं लाखों संसार के प्राणी हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। गोपियां सबको छोड़ करके संपूर्ण रूप से कृष्ण में तन्मय हो रही हैं, अपनी बुद्धि की सारी वृत्ति उनमें लगा दिया है, कृष्ण के लिए ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता जो एक के लिए सारे विश्व को छोड़ दें। गोपियां तो करोड़ों हैं, किसके लिए वो छोड़ेंगे, किसी को छोड़ सकते हैं, रुक्मिणी को छोड़ देंगे उनका चिंतन, अपने बेटे शाम्ब को छोड़ देंगे, नंद बाबा को छोड़ देंगे, यशोदा मैया को छोड़ देंगे, ब्रज का चिंतन छोड़ देंगे, अपने एक छोटे से बछड़े को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। किसी भी भक्त को चाहे तम अभी नीचे में अभी है किसी को छोड़ देंगे, किसी को अभी एक ध्रुव जैसा सकाम भक्त है उसको छोड़ देंगे, उसके हृदय में आए कि नहीं आए, उसको भी नहीं छोड़ सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए गोपियों के समान में समस्त विश्व की सारी चिंताओं को छोड़ करके और कृष्ण में तन्मय हो जाना यह कृष्ण के बस की बात नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनके ऋणी है। मैं कभी ये भूल नहीं सकता कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण भगवान हूं, इसको भूल सकते हैं कृष्ण। कृष्ण नंदनंदन होने पर गोपियों के साथ में विलास भी कर रहे हैं, उस समय उनकी भगवत्ता दूर नहीं होगी, जरूर रहेगी, हो सकता है माधुर्य के द्वारा कुछ ढक जाए, किंतु कृष्ण का ये मैं भगवान हूं सर्वैश्वर्य पूर्ण ये भाव कभी नहीं जान दूर हो सकता, निश्चित रूप में रहेगा ये, कभी आज तक उनको कभी नहीं विस्मरण हो सकते मैं कृष्ण हूं। नंदनंदन के रूप में भी जहां भी रहेंगे जरूर उनमें भाव रहेगा। गोपियां ये सखी मैं कौन हूं, कहां जा रही हूं, किस लिए ले जा रही है, मूर्छित होकर के गिर जाती हूं। जेहेतु जे जथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण की यहां पर जो प्रतिज्ञा थी यहां पर त्यक्त हो गई, छूट गई, नहीं कर सके। गोपियां जैसे सब कुछ छोड़ करके करती हैं, नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव को कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण ये भी कह रहे हैं उनके विरह में बाची बोना ये अश्लीलता का आरोप नहीं किया उन्होंने। उद्धव तुम कह देना कि उनके विरह में नहीं बचूंगा, ये नहीं कहा, क्यों, किन के लिए, एक के लिए, उनके तो कितनी है गोपियां, जैसे एक कृष्ण के लिए कह सकते हैं मैं उनके बिना नहीं बच, किंतु कृष्ण कैसे कहेंगे, किसके लिए कहेंगे, वो नहीं कर सकते, इनके लिए असंभव है भाई, संभव कभी नहीं हो सकता है, बुझते पार। कृष्ण यदि कहें हे राधे हे ललिते मैं तेरे अतिरिक्त बच नहीं सकता, हमारा समस्त मन प्राण जो कुछ है सब तुमको मैंने अर्पण कर दिया, कर सकते हैं, किसी को ठग देंगे कह करके, जिसको कहेंगे, मान लो कि यदि कर भी दिया तो बाकी सबके ऋणी हो गए, सबके ऋणी हो जाएंगे उसको अतिरिक्त, इसलिए उनके लिए संभव पर नहीं। इसलिए कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को यहां पर भंग करते हैं, जैसे ये मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। एक कानी कौड़ी का भक्त है ने? अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सब, उसके हृदय में मैं रहता हूं। एक व्यभिचारी भक्त है किंतु अनन्य रूप से कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का भजन नहीं करता, किंतु उसमें दुराचार है, उसको भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अनन्य रूप से भजन कर रहा है। अनुसंग का अर्थ बतला रहे, अनुसंग। मुक्तिवादियों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए यह अर्थ होगा संग प्रत्याग कर, और इनके लिए होगा निरंतर परम आसक्ति के सहित विशेष संग के द्वारा जहां दे धी, धी मैंने मन की वृत्ति बुद्धि अंतःकरण अखिल जितनी भी वृत्तियां हैं वो क्या चीज अनुकूलन कृष्णानुशीलनम की अंतिम सोपा। इसलिए उन गोपियों की महिमा में क्या कहूं कृष्ण का, और उनके प्रेम की महिमा में क्या कहूं, जगत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई तुलना का स्थल नहीं है जिसको मैं व्यक्त कर सकूं। क्यों तुम्हें जिससे मैं कुछ कर रहा हूं इसके पहले उन्होंने किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, किंतु उद्धव उनके समस्त मन की भावनाओं को समझ नहीं सके। इसलिए हम लोग भी नहीं समझ सकते, कौन समझेगा, साधन भजन करके उनके अनुगत्य में श्रुतियों की भांति यदि कोई उनका अनुगत्य करे, लाखों वर्ष आराधना करे, तो श्रुतियां उस अवस्था में जब पहुंचेंगी तब कुछ समझ सकती हैं। तब गोपियों का संग उनको प्राप्त हुआ और उनका तप कषाय भी दूर हुआ, तो वो नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश। दंडकारण्य के निवासी लोग भी कितने कोटि कोटि वर्ष तक आराधना की, रामचंद्र जी का दर्शन भी हुआ तब भी नहीं हुआ, उनके कृपा से प्रकट ब्रज में जन्म लेकर के गोपियों का संग किया, तब कहीं जा करके उनकी महिमा को थोड़ा सा समझा। श्रुतियां कुछ महिमा समझिए, कैसे समझिए, रासलीला में वर्णन जो हो रहा है श्रुतियों में उसके द्वारा उन्होंने कृष्ण गोपियों के रास की और कुछ कुछ उनके प्रेम की महिमा समझी। उनको हो गया लोभ, इसलिए वो एक एक ऋचाएं एक एक मंत्र गोपी भाव से उनकी आराधना की, नहीं तो समझ में नहीं आता तो कैसे करते। इसलिए बहुत सौभाग्य की बात है ये ब्रज का भजन है, कोटि करोड़ों लोगों में से कोई एक समझेगा, और समझने में से लाखों में से किसी को एक यथार्थ लोभ होगा, और लाखों लोभ वालों में से कोई एक अच्छी तरह से साधन भजन करके अनर्थ निवृत्ति होकर के इसको उपलब्धि करेगा। भाई बहुत कठिन चीज है, तभी महाप्रभु जी की कृपा से हम लोगों के कानों में कुछ आ रहा है। ये जो सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं इसका अर्थ आज तक किसी ने अर्थ ऐसा लिखा नहीं, क्यों, महाप्रभु जी का संग नहीं हुआ, महाप्रभु जी के विचारों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, महाप्रभु जी ने उनके हृदय में अंतर प्रेरणा दी तब ये लिखे। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये सब का विचार जो लिखा है कहां से लिखा, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की कृपा से कुछ हृदय में स्फूर्ति हुई, उनका जूठन खाकर, जूठन खाकर मैंने क्या, उनके टीकाओं का जूठन लेकर उनके हृदय में स्फूर्ति हुई तब ऐसा लिखा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं गोपियों की तो बात क्या, इनके भाव विश्व में कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा परिलक्षित नहीं होता, दृष्ट गोचर नहीं होता, इसका कोई भी उदाहरण नहीं है। ओहो कृष्ण कह रहे हैं, ओहो मैं कब अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र इत्यादि सबको भूल सकूंगा, मैं भूल जाता और भूल करके वैसा ही तन्मय हो जाता जैसे गोपियां हमारे अंदर में तन्मय हो जाती है। बड़े दुख के साथ उद्धव जी को कह रहे हैं वैसे मैं तन्मय हूं। अदा यहां पर अदा है मूल में, देखो समात्मानम अदा तथेदम, अदा माने क्या, जो दूर की बस्ती होती है अदा, और निकट होता है इदम, इदम अयम आत्मा, और अदा दूर की चीज को कहते हैं, तो कह रहे हैं अदा अभी मेरे जो परिवार कहां है अभी दूर है, परिवार के साथ में यहां तक कि दूर का जो बैकुंठ पद है, द्वारका का पद है, राम का पद है द्वारका इत्यादि, और वहां के जो हमारे परिजन हैं हमारी पत्नियां कितनी 16,108 पुत्र कलत्र सब है, मैं इनको भूल जाऊंगा, मेरे लिए तो असंभव है भूलना, किंतु क्या कभी मेरे सौभाग्य ऐसा हो जब भूल करके गोपियों में तन्मय होकर के हमारी बुद्धि वृत्ति उनमें लग जाएगी,
सके। क्या सचमुच में हमारे लिए कभी ये सर्व विस्मरण क्या कभी होगा? हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण कहते हैं ये हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, किंतु एक बात होगी, कुछ मैं विस्मरण हो जाऊंगा, किंतु जैसे मर्म पीड़ा उनमें होती है, गोपियों के अंदर में, हृदय में, वो मर्म पीड़ा हमको नहीं अनुभूति होगी। क्यों? उनकी जैसी ममता हमारे अंदर में नहीं है, उनमें कृष्ण के प्रति जो ममत्व भाव है वो कृष्ण में उनके प्रति नहीं है, बटी हुई है, लाखों भागों करोड़ों भागों में विभक्त है। यहां पर कृष्ण की कुछ भी नहीं चलती, लाखों जगह में विभक्त। कभी कभी मैं क्या, मैं गोपियों के बीच स्मरण में ऐसी मर्मांतिक पीड़ा को प्राप्त कर सकूंगा जैसे गोपियां हमारे बीच स्मरण में पाती, अभी विरह में दूर हो जाने के बाद में पाती हैं। इसलिए क्या मैं सब कुछ छोड़ करके और उन्हीं के चिंतन में लगातार ध्यान में लग जाऊंगा समाधि में बैठ करके? ये मेरे लिए संभव नहीं। क्यों? बाधक है एक सर्वज्ञता, बाधक एक है ऐश्वर्य, बाधक है सबके प्रति हमारा प्रेम, ये सब बाधक है, एक में नहीं स्थिर हो सकता। यदि कोई महात्मा ऐसा कहता है, कोई कृष्ण के परम भक्त हैं, वो कहते हैं उद्धव संवाद में, कोई भक्त, प्रेमी भक्त गोपी विषयक महात्मा वर्णन करा गोपी प्रेम का, जैसा कि शास्त्र में वर्णन है, उसका वर्णन करते हुए गोपियों के लिए कह रहा है, कृष्ण के विच्छेद में गोपियों की जो विरह पीड़ा हुई और उन विरहणी गोपियों की पद्धति के अनुसार उनकी जैसा पतित्व माने वो जैसा विरह का अनुभव कर रही हैं, उसको कोई भक्ति जोगी मन में कल्पना नहीं कर सकता कि उनको कैसे मर्मांतिक पीड़ा गोपियों के हृदय में हुई। कृष्ण भी था नहीं पाते हैं इसके लिए, और की तो बात क्या, यह द्रुह पदवी, द्रुह ये पदवी है, इसको पाना बड़ा बड़ी कठिन है, वो गोपियां ही पा सकती हैं, दूसरा उसका कोई उदाहरण नहीं, कृष्ण भी नहीं, भक्त की तो बात ही क्या। भक्त किसको कहते हैं? जब तक वो साधन करता है, चाहे वो भाव का भी हो, तब तक तो वो भक्त है, जैसे नारद ऋषि अंत तक ये भक्त है, सनत सनंदन सनत कुमार भी भक्त है, हमारे नारद ऋषि जब तक साधन कर रहे हैं तब भक्त है, और जहां उनकी सिद्धि हो तब क्या हो गए, परिकर वर्णन नहीं करेगा, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि तक वर्णन कर रहे हैं, वो जब वर्णन महाप्रभु ने कौन कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा, हमारे स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ने क्यों नहीं लिखा, वो जहां एक कलम उठाया विरह में तड़पने लगे, उसमें अविष्ट हो गए, उनकी कलम आगे बढ़ नहीं पाई, दिन रात उसी में लगे रहे, आंख के बिंदुओं से पेपर भर गया, नहीं लिखी। ये तो महाप्रभु जी की विशेष प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने कुछ कलम चलाई, अपने सामर्थ्य से नहीं, महाप्रभु जी ने चलवाई, इसलिए स्वरूप दामोदर राय रामानंद कोई भी ग्रंथ नहीं लिख सके, दो एक थोड़ा सा बस पहले ही राग यही थोड़ा सा लिखा या दो चार कुछ, उनके लिए संभव नहीं है। रात भर श्रीमती राधिका जी कलम लिए और कौन लिखेंगी, बिंदु दिया बस रात बीत गई, सारी रात बस हो गया, पत्र बंद कर दिया, कृष्ण के पास में भेज दिया, कृष्ण ने पढ़ लिया पूरा पत्र, उनको पढ़ते 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 सारी रात बीत गई, वो पढ़ते ही वो बिंदु केवल, और वो भी तन्मय हो गए। ज्ञानी जोगी कर्मी प्रभृति ये जोगी लोग है, ये क्या समझेंगे इस प्रेम की व्याख्या, गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते, इसीलिए जोगिना बहुवचनांत पद दिया गया, जोगिना देख करके जोगिना, कोई भी जोगी, कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी कोई, ये सब लोग उसको
हृदय में धारण नहीं कर सकते उस भक्ति को गोपियों के हृदय में जो प्रेम है। अथवा श्लोक में वियोगिनी, वियोगिनी है दूसरे श्लोक में, इसमें दिया काम गया करें जी, उसके मन के द्वारा भी कोई चिंतन नहीं कर सकता भाई। साधारण लोग उद्धव जैसे भक्त लोग बहुत दूर से उसके चरणों की धूलि की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, और आशा महो श्लोक में तीन गुलम होकर के उनके चरणों की धूलि का स्पर्श बस इतना ही कामना कर सके, आगे नहीं, अधिक क्या कहूं। ये गोपियां कैसी हैं, सबके ध्यान आस्पद कृष्ण है, सभी लोग कृष्ण का ध्यान करते हैं, और कृष्ण का ध्यान आस्पद कौन है, ये गोपियां उनके ध्यान में लग जाते हैं, वो गोपियां हैं। इनके प्रेम की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, अतएव तहां देर महात्मा स्वभाव तो सर्वश्रेष्ठ, उनका महात्मा सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात नित्य भक्ति योग युक्त मध्वाचार्य भी नहीं समझ सके, रामानुज भी नहीं समझ सके, सूरी लोग नहीं समझ सके, अलवर लोग नहीं समझ सके, थोड़ी सी और गोदा देवी बस रुक्मिणी प्रेम तक समझ सके, नहीं समझ सके कोई। इसलिए नित्य भक्ति योग युक्त योगियों के ध्यान गोपियां हो सकती हैं, ध्येय हो सकती हैं। बड़े बड़े कौन, सुखदेव जी ये योगी हैं, मुनि हैं, पराशर मुनि हैं, ये सब के ध्येय कौन है, ये गोपियां हैं। अतः गोपियों का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ रूप से प्रतिपन्न हुआ, ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। आज यहीं तक रहे, और कुछ कहना चाहता तो अब कल बतलाए। वंशा कल्पतरुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, जल्दी जल्दी
मनु